آگے جو آیات ہیں منافقین کے بارے میں، اور آیات پڑھتے ہوئے انشاءاللہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ ان منافقین کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تھے، ان کا کیا ایٹیچیوڈ تھا، کیا بیہیویئر تھا، کیا کرتے تھے وہ. لیکن ساتھ ساتھ ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں گے اور اپنے اعمال کو بھی، کیونکہ جو کچھ اس کے اندر باتیں ہیں، ایسے لگتا ہے کہ ہم اگر اپنے آپ کو کھڑا کر لیں تو کافی چیزوں میں ایسے لگتا ہے کہ ہم ان میں سملر ہیں، ہمارا بیہیویئر وہی ہے جو منافقین کا تھا. تو پھر اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ منافق کی والی نشانیاں اگر ہمارے اندر کہیں وہ بیماری پائی جا رہی ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہے. اب منافقین کیسے تھے؟ یہ نہ ہو کہ ہم لاشعوری میں کوئی ایسے کام کر رہے ہیں جو منافقوں والے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہ چلے. اب دیکھتے ہیں یہاں پہ، وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ، وہ کہتے ہیں، کون؟ جو منافق ہوتے ہیں، چاہے وہ آج کے وقت کے منافق ہوں، اس زمانے کے منافق ہوں، کبھی کے بھی وقت کے منافق ہوں. منافق صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں نہیں تھے، یاد رکھیں، کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہتے ہوئے بھی کوئی لوگ منافق تھے تو بعد کے دور میں تو اور زیادہ پھر منافقت ہوگی. اگر اس وقت ہو سکتے تھے نا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آج نہ ہوں؟ آج بھی ہیں. تو وہ کہتے ہیں آمنا باللہ وبالرسول، ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر. اب یہ بات ان کی زبانی، یعنی وہ دعویٰ اپنا یہی کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں. ایمان کے دعوے میں بہت یعنی لاؤڈ ہے وہ. اطعنا، اور ہم نے اطاعت کی، یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں. تو ان کا کیا دعویٰ؟ ایمان بھی ہمارے اندر ہے اور ہم اطاعت کرنے والے بھی ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ثم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی تھوڑا تراخی جس کے اندر آ جاتی ہے، تھوڑا سے تھوڑا ٹائم آ جاتا ہے. ثم یتولى فریق منہم من بعد ذلک، سارے نہیں کرتے مگر کچھ ان میں سے پھر کیا کرتے ہیں، وہی تو منافق ہوتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کہ یتولى، منہ موڑ جاتے ہیں اس کے بعد، اپنے ایمان کے دعوے کے بعد کہ ہاں میں اللہ پر ایمان لایا، ہاں میں اس کے رسول پر ایمان لایا اور ہاں میں اطاعت کرتا ہوں. اس کے بعد جو پکے سچے ہوتے ہیں وہ تو اس کے اوپر رہتے ہیں، لیکن ایک فریق، ایک گروپ جو منافقین کا ہوتا ہے وہ منہ موڑ جاتا ہے. کس وقت منہ موڑتا ہے؟ کس چیز سے منہ موڑ جاتا ہے؟ اطاعت سے. اطاعت کی بات آئی نا، اطاعت سے منہ موڑ جاتا ہے. پھر اس کو اپنی مجبوریاں یاد آ جاتی ہیں، پھر اس کو کوئی بہانے یاد آ جاتے ہیں، یعنی جب کہا جائے یہ کام کرو تو پھر وہ نہیں 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 یہ نہیں ہو سکتا. پھر ان کو کبھی اپنے جاب یاد آتی ہے، کاروبار، گھر والے، کبھی بچے، کبھی کوئی چیز، کبھی کوئی چیز. یعنی عمل کے وقت میں کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ جب عمل کرنے کا وقت آتا ہے تب وہ منہ موڑ جاتے ہیں. وما اولائک بالمؤمنین، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک ورڈکٹ دے دیا، ان کے لیے ایک فیصلہ سنا دیا کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اب وہ تو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لانے والے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. سورہ بقرہ میں بھی آیا تھا نا، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ کچھ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پہ، ہم آخرت پہ ایمان لائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ مومن ہی نہیں. انہوں نے کلمہ تو پڑھا ہے، وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، وہ مسلمانوں کی صفوں میں کھڑے ہو کے نمازیں پڑھتے ہیں، وہ دیکھنے بھی ایسے ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہی تو ہیں، ان کے نام بھی مسلمان ہیں، انہوں نے کلمہ بھی پڑھا ہوا ہے، یہ ہماری مجلسوں میں بھی آ کے بیٹھتے ہیں. کیا چیز ہے جو ان کو مومن ہونے سے، ایمان کے اس سے نکال دیتی ہے دائرے سے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ نہیں ہے مومن؟ اس لیے کہ وہ بات جو وہ منہ سے کہتے ہیں وہ اس کے مطابق عمل نہیں کرتے. اور ایمان جو ہوتا ہے نا، صرف منہ سے بات کرنا نہیں ہوتا، بلکہ ایمان میں تین چیزیں آتی ہیں. اس کو لکھ لیں، ایمان میں تین چیزیں آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلی چیز تصدیق بالقلب، قلب آپ کا دل آپ کا تصدیق کرے کہ ہاں یہ سچ ہے، میں ایمان لایا. یہ نہیں کہ دل میں ڈاؤٹس ہوں، پتہ نہیں اللہ ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں اب کیا پتہ قیامت آئی نہیں، انہوں نے بس باتیں ہی بنائی ہوں، کیا پتہ یہ سچی کتاب بھی ہے یا پھر پتہ نہیں کسی لوگوں نے خود ہی لکھ لی ہو بعد میں، ایسے ڈاؤٹس آ رہے. وہ پھر صحیح نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، تصدیق بالکل دل ٹھک جائے کہ ہاں یہی بات ہے، یہ سچا ہے، یہ حق ہے. صرف پھر دل میں بات نہ ہو، اقرار باللسان نمبر ٹو اس کا پارٹ ہے، زبان اقرار بھی کرے کہ ہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے، ہاں اشہد ان محمد رسول اللہ، زبان یہ اقرار کرے. پھر نمبر تھری، عمل بالجوارح، جوارح جو ہیں آپ کے باڈی پارٹس، ان سے عمل کیا جائے اس کے اوپر، یعنی عمل اپنی زندگی میں عمل کر کے دکھایا جائے. دیکھیں ایمان پورا ہی تب ہوتا ہے جب یہ تینوں چیزیں پوری ہوتی ہیں. ایسے نہیں ہو سکتا کہ زبان سے تو دعوے ہو رہے ہوں لیکن عمل میں کچھ ہے ہی نہیں، عمل میں آپ مسلمان ہی نہیں نظر آتے، عمل آپ کو کسی اور لوگوں کی طرح ہے، کہیں آپ کی زندگی میں اسلام کے آثار ہی نہیں نظر آتے. اور آپ سوچتے ہیں نہیں میں بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ نہیں ہونا چاہتی. ایکسٹریمسٹ کی کیا بات ہے، جو آپ کو جو دین اسلام کہہ رہا ہے آپ کو تو وہ ماننا ہے، کیونکہ آپ منہ سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ پہ ایمان لائے، اس کے رسول پہ ایمان لائے، پھر کس چیز پہ آپ کا ایمان اگر اللہ کی بات ہی نہیں ماننی، اگر رسول کی بات ہی نہیں سننی، پھر کس چیز کے اوپر ایمان ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں یہ ایکسٹریمزم ہے، یہ نہیں ہمیں، یعنی اگر ہم نے عمل کر لیا تو ہم ایکسٹریمسٹ ہو گئے. تو عمل کے بغیر آپ سوچتے ہیں ایمان مکمل ہے؟ نہیں. اقرار باللسان کافی نہیں ہے کہ اگر میں کہہ رہی ہوں کہ میں مسلمان ہوں اور میں جب فارم فل کرتی ہوں تو ریلیجن کے خانے میں میں اسلام لکھتی ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہو جاتا کہ میں مومن ہوں. ہو بھی سکتا ہے، کوئی نہیں بھی ہو سکتا، مگر کسی کے بولنے سے نہیں وہ ہو جاتا، یہ بات یاد رکھے. اور منافقین کو یہی بات اس وقت سمجھ نہیں آتی تھی، وہ کیا سمجھتے کہتے ہیں یہ کہہ دینا، بس زبانی زبانی کہہ دینا، ہاں ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مومن ہیں، ہم بھی ایمان رکھتے ہیں، یہ کافی ہو جائے گا. ہمارے لیے ریکوائرمنٹ ہے ایمان کے لیے، عمل کر کے دکھاؤ، عمل کر کے دکھاؤ. بیکاز عمل از دا پروف، اٹس دا پروف کہ آپ جو زبانی بول رہے ہیں وہ سچ ہے. اچھا میں آپ کو ایک بات پوچھتی ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ کسی کو اپنی بیسٹ فرینڈ کہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کو کہتی ہے مثلا میں آپ کی بیسٹ فرینڈ ہوں، میں آپ کی یہ ہوں وہ ہوں، اور بڑے دعوے کرتی ہے، لیکن کیا اس کے دعوے کافی ہوتے ہیں؟ کیا یا آپ کو یہ چاہیے ہوتا ہے کہ جب آپ کو ضرورت ہو، جب آپ کے لیے کوئی مسئلہ ہو تو وہ آپ کو عمل سے پروف کرے کہ وہ واقعی آپ کی بیسٹ فرینڈ ہے، یا آپ صرف زبانی دعووں سے یہ بیسٹ فرینڈ ہے، بیسٹ فرینڈ ہے، بیسٹ فرینڈ، بیسٹ فرینڈ ہے، اور آگے کچھ بھی نہیں، تو آپ اس کو بیسٹ فرینڈ تو نہیں سمجھیں گے نا. جو عمل سے ثبوت نہ دے، جو بیسٹ فرینڈ بن کے نہ دکھائے، واقعی آپ کے اچھے برے بھلے برے وقت کے اندر کام نہ آ کے دکھائے، آپ کہتے تم کون سی قسم کی بیسٹ فرینڈ ہو. تو زبانی دعویٰ نہیں چاہیے، وہ کافی نہیں ہے. ہم ایک پارٹ کو صرف لے کے بیٹھ گئے یا ہم دو پارٹس کو لے کے بیٹھ گئے کہ تصدیق بالقلب اور اقرار باللسان، جی ہمارا کام مکمل ہو گیا. ہم دل سے بھی مانتے ہیں، زبان سے بھی کہتے ہیں. جب میں نے آپ یہ سوچتے ہیں جب میں نے کہہ دیا کہ میں مومن ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ مطلب وہاں پہ اللہ کے ہاں یہ بات ڈکلیئر ہو گئی اور اب یہ پروفڈ ہے کہ میں مومن ہوں، ایسا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے جب تک یہ تھرڈ کمپوننٹ نہ ہو. یہاں پہ مسئلہ ہی یہ ہے، ورنہ کیا پرابلم ہے؟ وہ تو کہتے ہی تھے نا کہ آمنا باللہ وبالرسول، اور بلکہ اتنے اچھے مسلمان بن بن کے دکھاتے تھے کہ جماعت میں آ کے نماز پڑھتے تھے مسجد میں. کیا ان میں کوئی کمی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں بیٹھتے تھے، آپ کا قرب ان کو ملا، یعنی آپ کے قریب ہوتے تھے، فزیکلی تو وہیں پہ تھے نا. اتنی بڑی سعادت کی بات ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرما رہے وما اولئک بالمؤمنین، یہ بہت سکیری بات ہے، یہ کوئی عام یہ ایسی بات نہیں کہ جو ہم ایسے اس کے اوپر سے گزر جائیں اور سوچیں وہ منافقین تھے اور ایسے تھا. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں دیکھو جو تصدیق نہیں کرے گا اپنے عمل کے ساتھ، اور عمل کے ساتھ تصدیق کیسے ہوتی ہے کہ اپنے سر کو جھکا دے، سرنڈر کر دے. جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک ہر اللہ کے حکم پہ اوپر اطاعت کرے، اوبیڈینس چاہیے. اوبیڈینس نہیں ہے تو نتھنگ، ईमान नहीं है फिर। आज कोई जितना मर्जी अप्रिशिएट करें, बड़े बड़े लोगों ने किया, गांधी ने किया, और भी आजकल बड़े पोएट्स और कोई लोग भेजते रहते हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं, इस्लाम बड़ा अच्छा दीन है, बहुत अच्छा है, इसके अंदर बड़ी अच्छी बातें हैं, मगर अगर अपने लिए एक्सेप्ट नहीं करता, इसको कबूल नहीं करता, तो वो मोमिन नहीं है। अबू तालिब ने कहा था, अबू तालिब का एक शेर था जिसका तर्जुमा है कि मैंने जान लिया है कि यकीनन ये दीन मोहम्मद तमाम दुनिया के दीनों से बेहतर और दुरुस्त दीन है, मगर क्या इकरार किया? नहीं किया। वो फर्स्ट स्टेज के ऊपर ही छोड़ दिया उन्होंने, और उसके बाद थर्ड चीज तो फिर नहीं आई। जब तक कोई अपने आप को इस दीन के मुताबिक ट्रांसफॉर्म नहीं करेगा, ढालेगा नहीं, वो मोमिन नहीं है अल्लाह के हाँ। चाहे वो मुंह से कितना बोलता रहे, कितना कहता रहे, कितने दावे करे, वो मोमिन नहीं है। सर्टिफिकेट उसी को मिलेगा ईमान होने का जिसमें ये तीनों बातें हैं। और याद रखें कुरान करीम में क्या आता है, आमनु आमिलु सालिहात आता है, ईमान की बात आती, इस्लाम की नहीं आती कि जिसने सिर्फ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह ये कलमा पढ़ लिया वो जन्नत में जाएगा। ईमान, ईमान चाहिए, ईमान के बगैर नहीं जा सकते। कलमा पढ़ना, इस्लाम लाना आसान है, मगर जरूरी नहीं जो इस्लाम लिया है वो ईमान वाला भी है। ईमान के लिए सब चीजें चाहिए। हो सकता है इस्लाम तो झूठा झूठा उसने कलमा कह दिया, हो सकता है कि उसने कलमा कह दिया लेकिन उसके दिल में कोई ईमान ही नहीं है। ईमान लाना जरूरी है, इस्लाम और ईमान अलग दो चीजें हैं। और इसके अंदर आप ये देखें तीन तरह के लोग हैं, एक जो सब कुछ मानते हैं, एक जो कुछ भी नहीं मानते, और एक जो कुछ मानते हैं और कुछ नहीं मानते। ठीक है, तो अब जो ऐसे लोग हैं जो कुछ माने कुछ नहीं माने, जो अपनी मर्जी हुई वो माने, जो अपनी मर्जी नहीं हुई वो नहीं माने, वो भी नहीं ईमान वाले, उनको भी नहीं ईमान का सर्टिफिकेट मिलेगा। ईमान वो है कि सब कुछ मान जाओ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सारी उम्मत जन्नत में जाएगी सिवाय उसके जिसने इनकार किया। तो साहबा ने पूछा वो इनकार करने वाले कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मेरी इताअत करेगा वो जन्नत में जाएगा, और जो मेरी नाफरमानी करेगा वो जहन्नुम में जाएगा। तो ईमान अल्लाह पे और उसके रसूल पे ईमान ये है कि रसूल की भी इताअत की जाए। और जो लोग कहते हैं कि नहीं जी वो तो हदीस तो बाद में लिखी गई, वो तो कुछ पता नहीं बदल गई, वो तो ऐसे हो गई, हम तो मानते ही नहीं है, वो फिर किधर जाएंगे, उनका क्या अंजाम है? तो इससे पता चलता है कि इताअत रसूल की होगी, अल्लाह पे ईमान होगा, रसूल पे ईमान होगा, इताअत होगी, अल्लाह के कलाम को सुनेंगे उसको मानेंगे, रसूल की बात को सुनेंगे उसको मानेंगे। ये अलग बात है कि इंसान ये कहे कि हाँ मैं मानती हूं लेकिन मेरे अमल में कोताही हो जाती है, मेरे से गलतियां हो जाती हैं, वो गलतियां होना अलग बात है, लेकिन ये कहना मैंने मानना ही नहीं, मैं नहीं मानती इसको, ये सही नहीं है। ये उससे फिर निकाल देता है इंसान को, ईमान के दायरे से निकाल देता है, कुफर में दाखिल कर देता है। अगर अल्लाह की किसी बात को कह दे हम नहीं मानते, وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ, جب ان سے کہا جاتا ہے, جب وہ بلائے جاتے ہیں اللہ کی طرف اور رسول کی طرف تاکہ وہ فیصلہ کریں ان کے درمیان, تو ایک فریق ان میں سے اعراض کرنے لگتا ہے, منہ موڑنے لگتا ہے, اعراض ہے کہ یعنی فزیکلی منہ موڑ لینا, فزیکلی مڑ جانا, اور آگے تولو آتا ہے تو وہ ہے دل کا نہ ماننا۔ ٹھیک ہے, تو اب کہا جب ان سے جاتا ہے کہ آؤ بھائی آپ کے درمیان اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کریں گے, کون سی چیزوں کے درمیان؟ نہیں, اب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ زندہ نہیں ہے تو پھر دین کے معاملات میں جو بھی فیصلے ہوں گے, اس زمانے میں ہر طرح کے فیصلے ہوتے تھے, مثلا کوئی دو لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا کسی زمین کا, کسی جائیداد کا, کوئی بھی کسی چیز کا کام کے جھگڑے ہو گئے, تو چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا فیصلہ کرتے تھے۔ ٹھیک ہے, اب اس میں تھوڑا سا یہ سمجھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے تو وہاں پہ کوئی ایسی सच अदालत तो मौजूद नहीं थी। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुआहदे वगैरह किए और आपको उन्होंने हाकिम बना लिया मदीना का, तो उस वक्त फिर सारे फैसले जाहिर है जो मुसलमानों के थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाए जाते थे कि आप उनके फैसले करें, और जो यहूदी लोग थे ना उनके पास चॉइस थी कि चाहे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फैसले ले आए, चाहे तो अपने सरदारों के पास ले जाए। ठीक है, तो जो मुनाफिकीन थे उनका क्या रद्देअमल था, उनका यहां पर बताया जा रहा है कि जब उनको अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाया जाता है कि वो फैसला करें। अब जाहिर ही बात है कोई मुसलमान है अगर तो उसको फैसले के लिए किसके पास जाना चाहिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। लेकिन वो क्या करते थे कि जब उनको कोई अपने फायदे की चीज नजर आती थी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएंगे तो हमारा कोई फायदा होगा, हम हक पे हैं तो हम इनके पास जाते हैं हमारा कोई फायदा होगा, फिर तो दौड़े आ जाते थे, जिसका अगली आयत में जिक्र है। और अगर उनको लगता था ना कि हम हक पे नहीं है और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए तो जरूर वो हमारे खिलाफ ही कोई फैसला दे देंगे, तो फिर कहीं और यहूदियों के पास जाने की कोशिश करते। और एक दफा एक वाकया भी इस तरह को हुआ था, एक मुनाफिक था उसकी किसी यहूदी के साथ किसी बात पे झगड़ा हो गया, तो वो यहूदी ने कहा कि चलो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चलते हैं फैसला कराने के लिए, तो उसने कहा नहीं वो तो हमारे पर बड़ा जुल्म करते हैं तो उनके पास नहीं जाना, तो चलो तुम्हारे काब बिन अशरफ के पास चलते हैं कि वो हमारा फैसला करें। जमीन के मुतल्लिक कोई झगड़ा था तो उसके ऊपर कहा गया कैसे हो सकता है कि एक बंदे के अंदर ईमान हो और वो कहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा फैसला ना करें, कैसे हो सकता। तो ये तो था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में। ठीक है, अब आपके बाद क्या है, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी हमारे दरमियान कई चीजों के इख्तलाफ हो सकते हैं दीन के मामले में, ये करना है नहीं करना चाहिए, करना चाहिए क्या करना चाहिए इसमें, तो फिर हमें फैसला कहाँ लेके जाना चाहिए। मेरे हमारे इमाम साहब तो ये कहते हैं, हमारे तो उन इमामों ने तो ये कहा, हमारे तो मौलवी साहब ये कहते हैं, हमारे तो बड़े ये कहते हैं, इसमें जाना चाहिए या कुरान और हदीस से अपने फैसले को लेना चाहिए। वैसे हमारे यहां अपने आप को कहते हैं हम सुन्नी हैं जी, हम सुन्नत पे चलने वाले हैं, जरा कभी पूछ भी लिया करें कितने सुन्नत पे चलते हैं, सबसे ज्यादा बिदात करने वाले हो जाते हैं। फिर पूछो कि अगर ये भाई आप ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था नहीं, ये तो हम उनकी मोहब्बत में करते हैं, मोहब्बत में कहते बिदत तो होती ही इसी तरह है। अब वो ईसाई जो है वो ईसा अलैहि सलाम को क्या नफरत में पूछते हैं, वो भी तो मोहब्बत में ही अल्लाह का बेटा बना के बैठे हैं। ये तो चीजें होती ही मोहब्बत में है कि मोहब्बत में जब गुलू हो जाए, तो जब कोई चीज का फैसला करना हो तो ये आगे से मत कहो हमारे इमाम हमारे मौलवी साहब हमारे तो मस्जिद के वो हैं जो वो तो ये कहते हैं वो तो फलाने स्कॉलर ये कहते हैं, नहीं अल्लाह रसूल के पास आओ। अब आपके पास कुरान भी है, आपके पास हदीस भी है, आपकी सुन्नत भी है, सब कुछ है, क्यों नहीं उसकी तरफ आते, उनके मुकाबले में अपने इमामों की बात ले आते, सही हदीस सामने आ जाए फिर भी कहते नहीं जी लेकिन हमारे इमाम तो ये कहते हैं, नहीं जी हमारे तो हम तो हमेशा से हमने तो यही बात सुनी है। इतनी आपको अजीज है उनकी बात अल्लाह के रसूल की बात के मुकाबले में, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं वो काम किया होगा और उसको बना के बैठ जाएंगे कि हम तो नहीं हमने तो यही करना है क्योंकि हमारे तो बड़े हमेशा से यही करते रहे। तो ये हैं आज के झगड़ों के फैसले, क्या फिर आज के अपने झगड़े लेकर जाते हो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ। दूसरी चीज इसमें क्या, दूसरी चीज ये कि अल्लाह और उसके रसूल के जो लॉज है ना शरीयत के, वो हमारे सामने बिल्कुल यानी क्लियर है, लॉज ऑफ शरिया। अब उसके अंदर क्या जब हम कोई मसला हमारे सामने आता है हम उससे दरपेश होते हैं तो हम क्या अपना फैसला कराने के लिए अल्लाह रसूल की तरफ आते हैं कि वो अल्लाह रसूल ने क्या फैसला दिया, या हम इन अदालतों में जाते हैं कि यहां से जाके हम फैसला करें क्योंकि मेरे हक में यहां से फैसला मिलेगा। ये अगली आयत भी पढ़ लेते हैं ताकि इस बात का ज्यादा समझ आए। वा इन यकुन लहुम अल हक, जब अगर हो उनके लिए हक यानी उनकी उनकी फेवर में बात जानी हो, या तू इलैहि मुज़ईनीन, तो इताअत गुजार होके आ जाते हैं, इतने मती हो जाते हैं कि नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही फैसला कराना है क्योंकि उनको पता है कि अब यहां से जो है ना हमें हमारी फेवर में फैसला जाएगा, क्योंकि हम सही जो है, हक पे जो है, और जब हक पे नहीं है तो फिर दूसरों के पास चल पड़ते हैं, क्योंकि उनको पता है अरसद अलैहिस्सलाम गलत बात नहीं करेंगे, हमारी फेवर में यहां से नहीं आएगा फैसला। तो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं ना, फिर जब उनको लगता है इधर फायदा होगा। तो असल में मुनाफिक होता ही दुनिया का बंदा है, वो जिधर अपना फायदा ना बस उधर जाते हैं। आपने देखा होगा कई लोग बिल्कुल इस्लाम से कोई सरोकार नहीं, बल्कि जहां किसी को देखते हैं उसको ऐसे बुरी बुरी बातें कहते हैं, कभी फनेटिक है फलाना, ये हो गया और इस्लाम तो एक्सट्रीमिस्ट और फलां, और इस्लाम के ऊपर इतनी बातें, और जब अपनी फेवर में कोई बात आती है ना तो फिर फौरन कहते इस्लाम भी तो ये कहता है ना, हमारा इस्लाम भी तो ऐसे कहता है ना। भैया हमारा इस्लाम आज आपको याद आ गया, लेकिन उससे पहले जब आज तक और बातें इस्लाम की थी वो तो उसमें तो कभी इस्लाम नहीं याद आता। उसमें अगर आप कहते नहीं जी आज के फैशन ऐसे हैं, आज के ट्रेंड्स ऐसे हैं। एक सच्चा वाक्य आपको बताती हूँ। कोई लड़कियां मेरे पास पढ़ने के लिए आती थी, तो उनके जो घर वाले थे ना, पेरेंट्स उनके जो फादर थे, वो बहुत ज्यादा मुखालिफ थे उनके, क्योंकि क्यों कुरान पढ़ने चल पड़ी और कुरान को सीखने चल पड़ी और ये क्या हो जाएंगी, लो जी अब इन्होंने हिजाब भी लेने शुरू कर दी, और ऐसे वैसे बहुत क्रिटिसाइज करते थे और बहुत उनको इस चीज का मजाक करते थे, तो यानी बहुत मुखालफत करते थे। और एक दफा क्या हुआ कि उन्हीं साहब का पैगाम मेरे तक आया कि बच्चियों को समझाएं कि इन वालदैन के हकूक कितने होते हैं। देखो यही बात आ गई ना, जहां पे अपना फायदा हुआ वहां पे इस्लाम याद आ गया कि जी इस्लाम के रूह से बताएं। और इससे पहले तो आपको इस्लाम इतना बुरा लगता था कि आप उनको मना करते थे कि ये ना पढ़ो, अपने हकूक लेने के लिए इस्लाम याद आ जाता। फिर जब हमें पता है कि अब वालदैन के हकूक तो बहुत है इस्लाम ने दिए, तो अब हमारा फायदा होगा इसमें, तो अब उन्हीं बच्चियों को मैं इस्लाम के रूह से बताऊं जिस इस्लाम की तो आप हर वक्त मुखालफत करते। तो ये हमारे अंदर देखें, जिधर हमारे हमें लगता है ना कि इधर को हमारा फायदा है, उधर हमें इस्लाम याद आ जाए, और बाकी टाइम पे हमें इस्लाम पता ही नहीं है इस्लाम है क्या। यही वो काम करते थे, सिंपल एज दैट। आज भी कई फैमिली मैटर्स में खास तौर पे यहां की हकूमतें बहुत ज्यादा फेवर देती हैं औरतों को, बहुत ज्यादा चीजों के अंदर फेवर दे देती हैं। तो अब औरतें क्या चाहती हैं कि फैमिली लॉज के अंदर इनके साथ रुजू किया जाए। इस्लाम तो इंसाफ की बात करता है कि जो इंसाफ है वो ही होना चाहिए। अब ये अदालतों ने अपने कानून बनाए, फिर हम बाकी टाइम पे इस्लाम की उसको मानते हैं, लेकिन जहां पे हमारा अपना फायदा मिल रहा है, यहां से पैसे ज्यादा मिलेंगे, यहां से मुझे जरा ज्यादा फायदा हो जाएगा, तो फिर हम वहां पे चल पड़ते हैं और कहते हैं कि नहीं वो यहां पे हम देख लें, तब इस्लाम को बिल्कुल भूल जाते हैं। तो उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी कि किस तरह से, देखें सूरह नूर में ना अहकामात बिल्कुल क्लियर हैं, कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है जो समझ ना आ रही हो, बस साथ साथ हमें अपना मुहासबा करना, अपने दिलों का जायजा करना है कि कब कुरान के और हदीस के अहकामात हमें कब याद आते हैं और कब हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। अगर हम इतना इस तरफ आने वाले हो ना, तो ये सारे जो लड़ाई झगड़े, ये जो सारे छोटी छोटी बातों के ऊपर इतने फिरके और इस तरह और बिदात और ये सब चीजें, ये खत्म हो जाएं अगर हम हर फैसले के लिए अल्लाह रसूल की तरफ आए, वो हर चीज क्लियर है। और अगर हम ये देख लें कि हर दिन जिंदगी में बहुत सारे दीन के मामले में हमें अहकामात की जरूरत है, हमें फाइंड आउट करना होता है कि अल्लाह उसका रसूल क्या कह रहे हैं। अगर कुरान भी खुला पड़ा है, हदीस भी सामने है, बता दी भी गई है, उसको हम दिन रात याद भी कर रहे हैं, रट भी रहे हैं, फिर भी अगर दिल में उसके अहकामात पे राजी नहीं है, अगर हमारा दिल इनके ऊपर खुश नहीं है, मुतमईन नहीं है, और हम सेटिस्फाइड नहीं है इनसे, दिल के अंदर ऐसे हो रहा है कि ये क्या, तो फिर अल्लाह से दिल मांगे। क्योंकि ये तो मुनाफिकीन का मिजाज था कि जब अल्लाह उसका रसूल फैसला कर देना, उसके बाद उसके अंदर कोई दिल में वो नहीं होनी चाहिए। आगे इंशाल्लाह ये आयत भी हम पढ़ेंगे, जब रसूल किसी मामले में फैसला कर दे तो फिर दिल के अंदर तंगी ना आए, उस फैसले को खुशी के साथ कबूल करें, ये सोच के कबूल करें कि ये अल्लाह का फैसला है, ये उसके रसूल का फैसला, रसूल भी फैसला अल्लाह का फैसला ही है ना, अल्लाह तआला की इज़्ज़त से ही वो फैसला देते हैं। उन्होंने कोई फैसला दे दिया, मिसाल के तौर पे मेरी आईब्रोज बनाने पे दे दिया, मिसाल के तौर पे मेरी और किसी काम कारोबार के सिलसिले में दे दिया, तो मैं क्या कहूं, मुझे तंगी होती है, हाय ये क्या फैसला आ गया, और मैं कन्नी कतरा के चली जाती हूँ, एराज बरतते हैं, इग्नोर करते हैं। और जहां पे हाँ ये फैसला आ जाए कि मेरे बच्चों को सिखाया जाए कि वो माँ की इताअत कैसे करे, और माँ के पैरों तले जन्नत है, तो फिर मैं उनको लेकर आ जाऊंगी, ये इसको सिखा दे जरा कि माँ के पैरों तले जन्नत है, तो फिर अपनी मनमाने फैसले चाहते हैं। ये भागते क्यों हैं, ये दूर क्यों होते हैं, इसकी वजह यहाँ पे बताई गई या इसकी कुछ वजूहात बताई गई कि क्या बात है, क्या आफी कुलूबी है मरद, क्या इनके दिलों में बीमारी है जिसकी वजह से ये दूर भागते हैं कि हाय ये ना हमें फैसला कोई दे दे। क्योंकि सच्चे ईमान वाले तो ऐसा कर ही नहीं सकते कि वो अल्लाह रसूल को छोड़ के कहीं और से फैसले ले रहे हैं। अम या ताबू, ये शक में पड़े हुए, ये इनके अंदर डाउट्स है क्या, दिल में अभी तक डाउट है क्या कि पता नहीं हक है कि नहीं, पता नहीं ये है कि नहीं, वरना ऐसे कैसे हो सकता था। अगर दिल में यकीन है कि यही हक है, अल्लाह का फैसला ही मेरे लिए बेहतरीन फैसला है, फिर कैसे हो सकता था कि इंसान अल्लाह रसूल से फैसला ना ले और किसी और से जाके पूछे कि मैं जिंदगी कैसे गुजारू, मैं खुशियां कैसे करूं, मैं गम में कैसे करूं, मैं नमाज कैसे पढ़ूं, मैं ये कैसे करूं, ये फैसले लोग मेरे लिए करेंगे अल्लाह रसूल को छोड़ के, क्या खाऊं क्या ना खाऊं, क्या पहनूं क्या ना पहनूं, ये फैसले दूसरों से अगर ले रहे हैं, क्या बात है, तुम्हें शक है कोई, अल्लाह रसूल की बात में कोई शक आ गया तुम्हारे दिल में। अम या खाफूना अन यहीफ अल्लाह अलैहिम व रसूलहू, या तुम डरते हो कि जुल्म करेगा अल्लाह उन पे और उसका रसूल, ये तो हमारे खिलाफ कोई फैसला करेंगे या ये हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं करेंगे, तुम्हें ये लगता है कि अल्लाह रसूल नहीं इंसाफ करेंगे, वो कोई तुम्हारे शौहर की साइड ले लेंगे इसलिए तुमने उनसे नहीं फैसला लेना, या वो कोई ऐसी बात बता देंगे जो सही नहीं हो तुम्हारे मुताबिक, तुमसे इंसाफ का मामला नहीं होगा इसलिए कहीं और जाते हो। देखिए, अगर दिल में नूर ही नहीं जला हुआ, वो चिराग जला ही नहीं है, दिल के अंदर कजी है, तेल तो मैंने बताया था ना प्योर ही है, लेकिन अगर दिल का शीशा मैला हो चुका है या वो फ्लेम ही नहीं है अंदर, वो ही बिल्कुल यानी चिराग है ही नहीं अंदर जो जो जलने की कैपेबिलिटी रखता हो, वो फितरत मस्क हो चुकी है, करप्ट हो चुकी है, तो फिर जाहिर है यही होगा ना, ये तेल दिखाया जाए जितना भी कुछ भी नहीं होगा, अंदर बीमारी है, मर्ज है अंदर, यही सूरह बकरा में हमने पढ़ा था। फिर आप मर्ज अगर होगा तो फिर जितनी मर्जी क्लासें ले लें, जितने मर्जी जो लेक्चर्स में बैठ जाएं, जितनी मर्जी चीजें पढ़ लें, कुछ फायदा नहीं होगा, दिल में ईमान ही नहीं, वो अंदर ही फितरत ही करप्ट हो चुकी है। अब सीधी बात भी उल्टी लग रही है, ये क्या बात कह दी, ये क्या कुरान में अभी आ गया, लो अब तो हर चीज ही हराम हो गई है, अब हम करें तो करें क्या, तो सब कुछ इसने हराम कर दिया, अब इसके इसकी बात सुनने की जरूरत ही नहीं, समझा, दिल में बीमारी है या दिल में शक है, अल्लाह के अकामात में शक करते हो कि वो सही नहीं फैसला देगा, या पता नहीं है उसकी तरफ से है भी या नहीं है, या तुम्हें ये लगता है कि अल्लाह तुम्हारे साथ ना इंसाफी करेगा, तुम ट्रस्ट नहीं करते अपने अल्लाह पे, उसके और उसके रसूल के बारे में ये सोचते हो कि वो जालिमाना तुम्हें अकामात दे देंगे, ये तो जालिमाना अहकामात हैं, इस्लाम के तो अल्लाह माफ करे वहशियाना है बड़े, ये तो मुश्किल हैं, ये तो ऐसे हैं, यानी हमारी तो इस चीज का कोई ख्याल ही नहीं रखा गया कि हमारी हमें हमारा भी क्या दिल चाहता है, आज के दौर में इन पे कैसे अमल हो सकता है, ये हो सकता है कोई अमल, तो तुम ये सोचते हो कि तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं हुआ, हा? तुम सोचते दिस इज नॉट फेयर विद यू, नो इट्स नॉट फेयर, अल्लाह अकबर, फिर सोचते हम वहां पे तो मुनाफिकीन थे मदीना में, तो आज के दौर में तो नहीं ना कोई मुनाफिक, सब पक्के मोमिन है, उस दौर में तो हो सकते थे लेकिन आज तो पक्के मोमिन है। فرمایا نہیں بل اولائک ہم الظالمون, بلکہ یہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں, ظالم ہی یہ ہیں. اور کون ظالم ہے؟ ہم الظالمون. ہم یہاں پہ اس کو حسر, کلمہ حسر بن جاتا ہے یہاں پہ, کہ یہی تو ہیں ظالم, اور کون ظالم ہے؟ انہی کو تو ظالم کہتے ہیں. ہم سوچتے ہیں ظالم وہ ہوتا ہے جو کوئی کوڑا لے کے کسی کو مار رہا ہو, یہ بڑا ظالم ہے, دیکھو کتنا ظلم کر رہا ہے یتیم بچوں کے ساتھ, یہ بھی ظالم ہے. جو کہیں آمنا باللہ و آمنا بالرسول و اطعنا, اور اس کے بعد پھر ان کے کام یہ ہوں. اللہ اکبر. یہ قرآن کی یہ آیات کیسے آئینہ دکھاتی ہیں نا, اگر ہم ان میں اپنا جائزہ نہ لیں اور ہم نہ دیکھیں اور اپنے آپ کو ان کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو جانچے نہیں, اپنا حساب نہ کریں, تو بہت خسارہ ہے. یہ تین سیناریوز, تین وجوہات دے دی گئیں, تم اطاعت اس لیے نہیں کرتے, یا تو تمہارے دل میں بیماری ہے, یا تو تمہیں شک ہے, یا تو تمہیں لگتا ہے کہ وہ نو نو دس از ناٹ فیئر. اسی وجہ سے نا, اب آپ مثلاً سوچ لیں کہ یہ جو مثال کے طور پہ پردے کے احکام آتا ہے, جو نہیں کرتا تو کیا ان تین وجوہات کے علاوہ کوئی اور وجہ ہے؟ کوئی اور وجہ نہیں. یہ صرف کہنے کی بات ہوتی ہے, وہ نہیں الاؤ کرتا, وہ نہیں کرتا, ایسے نہیں کرتا. جس کو یہ یقین ہونا کہ میرے رب کا فیصلہ میرے لیے خیر ہے, بس دیٹس اٹ, وہ کیسے نہیں کرے گا؟ اسی میں میرے لیے خیر ہے, اس سے زیادہ کوئی میرا بھلا نہیں سوچ سکتا, نہ میرے ماں باپ, نہ میرے شوہر, نہ میرے کوئی اور. وہی میرا بھلا سب سے زیادہ چاہتا ہے, اور سب سے زیادہ میری بھلائی کے لیے اس نے یہ احکامات دیے, اور وہ سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے, میری ماں سے بھی زیادہ, میرے شوہر سے بھی زیادہ. وہ کیسے نہیں کرے گا ان احکامات پہ عمل؟ لیکن جو اس پہ ڈاؤٹ کرنے لگے, جو اس کو ہی سمجھنے لگے گئی نا یہ ہی نہیں میرا اچھا چاہتا, میرا تو اچھا میرا شوہر چاہتا ہے, تو جو انسانوں کی خاطر نا اللہ کو ناراض کرتا ہے, اللہ تعالیٰ ان انسانوں کو بھی اس سے ناراض کر دیتا ہے. اور یاد رکھیے, یہ حدیث کا مفہوم بیان کر رہی ہوں, اور جو اللہ کی خاطر, اس کو راضی کرنے کی خاطر انسانوں کو ناراض کر دیتا ہے, اللہ تعالیٰ ایک دن انسانوں کا دل بھی اس سے راضی کر دیتا ہے, کیونکہ دل اللہ کے ہاتھ میں. اگر تم اللہ کو ناراض کر کے ان کو راضی کرنے کی کوشش کرو گے, بلیو می, آپ میرے سے لکھوا لیں یہ بات, اگر آپ نے ان کو خوش کرنے کے لیے اپنے اللہ کو ناراض کیا, یہ آپ سے خوش تب بھی نہیں ہونے. آج ایک بات پہ خوش ہو جانا, کل انہوں نے پھر منہ موڑ لینا, ہاں تم نے تو ایسا نہیں کیا تھا. یہ انہوں نے کبھی نہیں آپ سے راضی ہونا, یہ کبھی آپ کا احسان نہیں مانیں گے کہ ہاں یہ تم نے اللہ کو ناراض کر کے مجھے خوش کیا, تم بڑی اچھی ہو, کبھی نہیں راضی ہوں گے. آج نہیں تو کل پھر اور منہ بسور کے بیٹھ جائیں گے. لیکن اگر آپ نے اللہ کو راضی کر لیا, لوگ چاہے ناراض ہوتے رہے, ایک دن دیکھنا اللہ ان لوگوں کو آپ سے راضی کر دے گا. تو اس ایک کو جو راضی کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے نا, وہ تو کامیاب ہو جاتا ہے. جو انسانوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو ایک راضی ہوا تو دوسرا ناراض, دوسرے کو کیا تو تیسرا ناراض. آپ کبھی ان سب کو نہیں راضی کر سکتے. تو تمہیں کیا بات ہے, کیا وجہ ہے ان میں سے بتاؤ, کیا پرابلم ہے تمہارا, کیا تمہارے دلوں میں مرض ہے, کیا تمہیں شک ہے, کیا تم ڈر رہے ہو کہ پتہ نہیں کوئی میری سائیڈ نہیں لی جائے گی, کوئی اور کسی اور کی سائیڈ لے کے بات کر دی جائے گی, میرا اس میں کوئی نقصان ہو جائے گا, یہ سوچتے ہو, بڑی سختی کر دی ہے, بڑے سخت احکامات ہیں بھائی, تم یہ سوچتے ہو, تو پھر یہ ہے کہ جو پھر اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں پہ راضی نہیں ہوتا, یہ اس کے فیصلے ہیں, اللہ کا فیصلہ ہے نا, یہ ہم نے کیسے رہنا ہے, کیسے کرنا ہے, کیسے پہننا ہے, یہ اللہ کے فیصلے ہیں. یہ جو قرآن میں ہم پڑھ رہے ہیں, یہ کس کے فیصلے ہیں بتائیں؟ اللہ کے فیصلے ہیں نا, یہ اس نے ہمارے لیے ایک فیصلہ دے دیا کہ بھئی ایسے کرو. یہ جو ان پہ نہیں راضی ہوتا نا, ان پہ کچھ نہیں ہے, ہم ظالمون. دوسروں کو پھر ہم کیا ظالم کریں, پھر تو ہم خود ہی ظالم ہیں. اور مومن کیسا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. مومن کا کردار بھی اللہ ہمیں ایسا بنا دے. یا اللہ, کئی یہ آیت, خاص طور پہ اگلی جو آیت ہے 53 پڑھ کے مجھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ یہ جیسے کہ میری ہی بات ہو رہی ہے, مجھے کہا جا رہا ہے, ایسی ہی آیات ہیں. اب یہ مومنوں کا کردار کہاں ہے؟ اور یہ 51 اور 52 آیت ہے نا، یہ ہمارے لیے ٹیسٹ ہے، اس میں دیکھیں اپنے آپ کو، یہ کیا ہم اس کردار سے کلوزر ہیں یا نہیں. فرمایا انما کان قول المؤمنین. اچھا مومنوں کی بھی بات سن لو کہ وہ کتنے پیارے ہوتے ہیں. ایک وہ کردار اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھا دیا جو 47 آیت سے لے کے 50 آیت تک ہے، ٹھیک ہے. اب دوسرا کردار آپ دیکھیں، دوسرا کیریکٹر آپ دیکھیں کہ بے شک انما کا میں نے آپ کو کیا بتایا تھا، انا اور انما میں کیا فرق ہے؟ انما کلمہ حسر ہے، بس ان کی تو صرف یہ بات ہوتی ہے اور کوئی بات ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. یعنی یہ کنفائن کر دیتا میننگ. انما کانا ہوتا ہے قول، بات جو وہ منہ سے نکالتے ہیں نا مومن، ان کی کیا بات ہوتی ہے؟ اذا دعوا الی اللہ و رسولہ، جب ان کو بھی تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، لیحکم بینہم، کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرتے ہیں. ان کو بلایا جاتا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے اللہ نے تمہارے لیے یہ فیصلہ کر دیا ہے، اس کے رسول نے یہ فرما دیا ہے، تو اب وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ ادھر آپ نے کیا دیکھا تھا، وہ کیا کرتے تھے؟ منہ موڑ لیتے تھے، اعراض کرتے تھے. اور یہ کیا کرتے ہیں؟ ان یقولوا، کہ وہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا. سبحان اللہ، کہ کوئی تیسری بات ہی نہیں ہے. سمعنا واطعنا، اس کے اندر کوئی یہ نہیں ہے، سمعنا ثم اطعنا، ہم نے سن تو لیا پھر ہم نے مان لی، پھر کوئی دیری نہیں ہے، اسی وقت ہم حاضر. اچھا، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، ان کا فیصلہ سارا آنکھوں پہ. اچھا، اللہ نے یہ فرمایا، اس کی بات کے آگے تو فوراً مجھے قبول ہے، کوئی بات ہی نہیں ایسی. ہم نے سیرت میں پڑھا کہ وہ انہوں نے ہانڈیاں چولوں پہ رکھی ہوئی تھی، یعنی ہانڈی پک رہی تھی اور ان میں گدے کا گوشت تھا اور بھوک بھی لگی ہوئی ہے، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ جاتا ہے کہ یہ حرام ہے، یہ نہیں کھانا. ہانڈیاں، چڑی ہوئی ہانڈیاں بھوک میں اٹھا کے اور پھینک دی. یہ کیا ہے؟ یہ ہے سمینا واتانا. یعنی آہو، آپ کو نہیں اتنا خیال آیا، ہماری تو بھوک تھی اور اب ہم کیا کریں، ہم سفر میں آئے ہوئے ہیں، نہ ہمارے یہاں پہ گھر ہے کہ ہم وہاں سے ہی اور لے آئیں، آپ نے ہماری بھوک کا بھی نہیں احساس کیا. دیکھو، ان کو تو اتنا بھی نہیں احساس ہوتا، دیکھو یہ کیسے ہیں، یہ ان کو نہیں پتا کہ ہم کہاں سے کھائیں گے آپ، اور ہمیں کتنی بھوک لگی ہوئی ہے، اور کیا ہے یہ، کوئی باتیں نہیں بنائی. اور یہ آج کے وقت کے اندر پتا نہیں ہے یہ کتنے مشکل ہوں گے یہ احکامات پہ عمل کرنا. نہیں، سمینا واتانا، بس سن لیا ہم نے، مان لی، کوئی بات ہی نہیں ہے. یعنی وہ کتنا کھلا دل ہے ایمان والے کا، وہ کیسا ہوتا ہے، وہ ہائے وائے نہیں، او یہ بھی حرام ہے، او یہ بھی حرام ہے، یہ کیا بات ہوئی، لو پھر ہم کریں تو کریں کیا، ہم جائیں تو جائیں کدھر، ہماری تو زندگی مشکل کر دی ہے، ہمیں تو یہ ہے، ہم آئندہ سے سنا ہی نہیں کریں گے، کیونکہ یہ تو اسلام کے ہیں ہی بڑے مشکل، کون اب ان کو کرتا پھر. نو نو نو، اللہ اکبر. میں سوچتی ہوں کہ کتنی اصلاح کی ضرورت ہے ہمیں، آپ کو تو نہیں میں کہہ رہی ہوں، میں اپنے آپ کو ہی کہہ رہی ہوں کہ کتنی اصلاح کی ضرورت ہے، کہ اللہ تیرا حکم آئے تو فوراً بس منہ سے نکلے سمے نہ وات آنا، بس سن لیا ہم نے، مان لیا، فوراً قبول، فوراً. ہم نے نہیں پوچھنا ہے کہ میں اس سے جا کے پوچھوں، ابھی میں مشورہ کروں گی گھر میں، ابھی میں تھوڑی باتیں اس سے پوچھوں گی، اس سے کروں گی، کیا کریں، ابھی بچوں سے بھی تو پوچھنا ہے، پھر شوہر سے پوچھنا ہے، پھر اس سے پوچھنا ہے، پھر کریں گے تو کریں گے کیا، پھر اچھا کوئی اور آپشن نہیں ہے، اچھا پھر کس طرح سے یہ ہوگا. یہ سمے نہ آتا نا، پتہ ہے کون کہہ سکتا ہے؟ جس کو ٹرسٹ ہے اپنے اللہ پہ، جس کو ٹرسٹ ہے. اللہ اکبر. ابھی وہ ہمیں کہہ دیں کہ بھئی آپ جو ہے نا ایسا کیا کریں، سمارٹ ہونے کے لیے نا، ویٹ لوز کرنے کے لیے آپ کو یہ کھانا ہوگا، اور وہ اتنا کڑوا ہے، اتنا وہ ہے، جو بھی چیز کوئی کہہ دے گا ہم کھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں اس کے اوپر ٹرسٹ ہے نا، کہ جس نے جو کہا ہے بالکل ٹھیک ہے، اور اس سے میں جیسے مطلب ایک آئیڈیل وہ مجھے مل جائے گی چیز. ہمیں نام جنت کے شوق ہیں ایسے کہ ہم وہ کہیں گے ارے جنت مل جائے گی، اس سے زیادہ ہمیں یہ شوق ہے کہ میں پتلی ہو جاؤں. پتلی ہونے کا نسخہ کسی سے پتہ چل جاتے، دیکھنا کس طرح سے ہم کرتے ہیں، چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے، کتنی بھی مہنگی کوئی چیز لا کے کھانی پڑے، کرتے ہیں نا. देखिए जिम्स भरे में लोग धड़ाधड़ लगे हुए वहां पे, हम भी स्मार्ट हो जाए, कोई गोली खानी पड़े, डाइट करनी पड़े, खुद को भूखा रखना पड़े, अपनी अंदर को मारना पड़े, अपनी लजीज चीजें सामने आ रही हैं, बैठे में नहीं मैंने खानी, क्योंकि मुझे अजीज है कि मेरा फिगर अच्छा हो जाए। लेकिन जन्नत इतनी भी अजीज नहीं कि उसकी खातिर हम जरा सी भी कोई कुर्बानी दे दे और कहें कि नहीं मुझे जन्नत चाहिए, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, ये विल नहीं है जन्नत के लिए। ये जो शौक होता है ना, ये जो किसी चीज की धुन लग जाती है और किसी की ख्वाहिश, किसी चीज को पाने की ख्वाहिश अंदर पैदा हो जाती है और फिर इंसान उसके लिए फिर कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, ये चीजें फिर करवाती है, फिर अमल करवाती है, फिर भाग दौड़ कराती है। और जब ये शौक ही ना हो, जन्नत तो मुझे वैसे ही मिल जानी है, इतनी मुझे मुश्किल करने की क्या जरूरत है, फलाने को तो ऐसे ही मिल गई थी बस कुत्ते को पानी पिलाने पे, और मुझे तो वैसे ही मिल जाएगी, मैंने तो और भी कितने काम किए हैं। ये चीजें होती ना, ये शैतान डालता है, वो करने की क्या जरूरत है इतना, वो अल्लाह का फुरुर है, उसने ऐसी दे देनी है, तुम इतनी अपने आप को क्यों हलकान करती, अल्लाह तो गफुर रहीम है, लेकिन तुमने बहुत बड़ा रिस्क ले लिया, बहुत बड़ा रिस्क ले लिया, वहां पे एक चीज पे भी अल्लाह ने खड़ा कर लिया ना कि भाई बताओ मेरा ये हुक्म तुमने सुना था, फिर तुमने आगे क्या किया, एक चीज पे भी खड़ा कर लिया तो हम गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसका हिसाब शुरू हो गया ना वो गया, उसके लिए अजाब है। हम सोचते हैं कि बस नहीं आराम से खलासी है, तो ये शैतान के धोखे में ना आए, ये शैतान बहुत धोखे देता है ऐसे, इसका तो काम ही ये है कि इंसानों को लेके जहन्नुम में चला जाए। तो यकूलू समेना वाताना, कितना प्यारा जवाब है, या अल्लाह हमसे ये करवा ले कि हम इस तरह कहने वाले हो जाए, समेना वाताना, अल्लाह हमने सुन लिया, हमने मान लिया। बनी इसराइल कहते थे ना समेना वासईना, हमने सुना ना मानना नहीं, हमने डर सुना है ना सारा, अब इसके बाद दिल में पहले ही ये बातें हैं, अच्छा ये आयतें आएंगी ना सुन तो लूंगी, ये क्लास तो ले लूंगी, माननी नहीं है, मैंने मैंने सोच लिया मैं नहीं माननी, ये बनी इसराइल का था रवैया, जो सूरह बकरा में हम पढ़ चुके हैं। और ईमान वाले ऐसे करते थे समय ना वाताना, वह उलाई का हुमुल मुफ्लिहून, यही तो हैं जो कामयाब होने वाले हैं, हुमुल मुफ्लिहून यही तो हैं जिन्होंने कामयाब होना है। ये जब कुरान सुन्नत अल्लाह रसूल की तरफ से कॉल आए, वो फैसला दे दें, वर्डिक्ट हैज बीन गिवन, एक जज ने फैसला कर दिया होता ना, बस फैसला हो चुका, अब इसमें कोई चेंज नहीं आनी, ये कुरान के हैं, हदीस के, ये फैसले हो चुके हुए हैं, अब मेरे आपके कहने पे यहां पे कोई चेंजेस नहीं होंगी, फैसला दिया जा चुका है, जो इसको सुन के मान लेता है ठीक है वो ही फला पाने वाले, चाहे खुशी है चाहे ना खुशी है, चाहे सख्त लग रहे हैं चाहे आसान लग रहे हैं, चाहे मुझे इसमें करने में दिक्कत लग रही है, चाहे लोगों की बातें सुननी पड़ रही हैं, चाहे दिल को मजा आ रहा है या नहीं आ रहा, बस मैंने करना यही है, वो लोग फला पाएंगे, और हम सोचते हैं फला ऐसे ही मिल जानी, फला तो थी हमने पढ़ी नहीं थी कदा फलाहुल मोमिनून में, फला तो थी मुशक्कत वाली चीज, फला तो थी वो चीज जिसमें मेहनत करनी पड़ेगी, फलाह तो है ही किसान। वह मई होती अल्लाह और रसूल, अब ये आयत जो है ना चार चीजें देती है, ये मैंने आपको बताया ना दो आयतें जो हमारा टेस्ट है, ये चार बातें बताती है कौन लोग हैं जो फाइज हैं, फाजा भी हम कहते हैं कामयाबी को, और इसमें कौन सी कामयाबी होती है कि मुसीबत से निजात पाके मतलूब चीज को पा लेना, जो मरहूब चीज है जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाए और मुसीबत से निजात पाए, फाज में ये चीज आती है कि जहन्नुम ना मिले और जन्नत में चले जाएं, जहन्नुम से निजात पाके, एक लोग वो भी होंगे जो जहन्नुम से होके फिर जन्नत में जाएंगे, एक वो लोग असल कामयाबी ये है कि इंसान जहन्नुम से बच जाए, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिल जन्नत फकद फाज, कि जो जहन्नुम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया वो है कामयाब, असल कामयाबी तो वही है ना, जहन्नुम में गोता खा के इंसान अगर जन्नत में जाए वो तो क्या, वो तो एक सेकंड भी नहीं बर्दाश्त की जा सकती, हमारा एक नाखून ज्यादा कट जाए ना तो इतनी तकलीफ होती है कि इंसान बेचैन रहता है। जहन्नुम की तकलीफें बर्दाश्त हो सकती हैं हमारे जैसे लोगों से? हम तो तबाह नाजुक के ऊपर जरा कोई मसला आ जाए, जरा कोई तकलीफ आ जाए तो बर्दाश्त नहीं कर पाते, बहुत नाजुक लोग हैं। वो है फाज, जो कामयाबी है ना वो ये है, हुमुल फाइजून, जो ये चार काम करेंगे वो है कामयाब। वमन युति अल्लाह, पहला काम क्या, इताअत करे अल्लाह की। अल्लाह की इताअत कहां से होती है, यानी फराइज को पूरा करे, ये है अल्लाह की इताअत। वह रसूलहू, और उसके रसूल की इताअत, यानी जितनी बातें हदीस में आई हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी चीजों से मना फरमाया उनको भी ऐसे समझे, ये नहीं अच्छा ये तो हदीस में, कुरान में तो नहीं है ना, तो चलो इसको छोड़ दो। जिनका हुक्म दिया है, हुक्म कि ये करो, वो भी इताअत करनी जरूरी है। वो आज हमारे सामने बैठ के नहीं हुक्म दे रहे, लेकिन वो हदीस जब हमारे पास पहुंच गई तो वो हमारे लिए भी है। हमने ये नहीं सुनना वो उनके अपने जमाने के लोगों को उन्होंने कहा था। अगर कह दिया कि जो ये चीज है ये तुम्हारे लिए हराम है, ये नहीं करना, इस चीज के ऊपर लानत है, इस बंदे की तरफ अल्लाह ताला नजरे रहमत से नहीं देखेगा, तो इसका मतलब है ये काम नहीं करने हमने। ये उन सहाबा के लिए सिर्फ नहीं है हुक्म, ये हमारे लिए भी है। फिर वह यख्शल्लाह, और अल्लाह का खौफ रखे। खौफ किस मामले में, यानी जो पिछली जिंदगी में गुनाह हो गए उनमें खौफ रखे, अल्लाह मेरा क्या मामला होगा, या अल्लाह मेरे से गुनाह हो गए, या अल्लाह मेरा क्या अब हिसाब किताब होगा। उनके ऊपर शर्मिंदगी, उन पे निदामत, उनके ऊपर रोना, उनके ऊपर तौबा करना, ये हो नंबर थ्री। नंबर फोर, वह यत्तकी, और तकवा इख्तियार करे। यत्तकी ही था, मगर यत्तकी में क्या आता है कि जब बहुत ज्यादा इंसान एफर्ट करे तकवा करने में, बहुत ज्यादा तकवा। तकवा में क्या है कि ये फ्यूचर के लिए, यानी फ्यूचर में एहतियात, आइंदा जिंदगी के लिए एहतियात, कॉन्शियस जिंदगी गुजारना, क्योंकि पिछली जिंदगी के उनके ऊपर इतनी नदामत है और उनका इतना डर है, अब आगे आगे जिंदगी के अंदर क्या है कि बस अल्लाह बस बचा ले, बस मैं किसी गुनाह में ना पड़ जाऊं, कहीं मैं किसी और ऐसी चीज को ना कर बैठूं जिसमें अल्लाह की नाफरमानी हो जाए, जिसमें वो मुझसे नाराज हो जाए, या हर वक्त ये एहसास रहना, ये तकवा है। वो उसका तकवा इख्तियार करें, फाउलाइका हुमुल फाइजून, तो वो हैं कामयाब होने वाले। अब इसमें गलतियां भी होंगी, इंसान फिसलेगा भी, मगर वो डरता ही रहता है, वो ना डर नहीं हो जाता। याद रखें, वो कभी ये नहीं कहता कुछ नहीं होता, ऐसा भी क्या डरना नहीं। और ये खशियत कौन सा डर है जो अल्लाह की ताजीम की वजह से आए, उसकी बड़ाई की वजह से दिल के अंदर हो, क्या ही वो रब इतना अजीम, वो अकबर है, मैंने ये कर दिया, मैंने उसकी नाफरमानी कर दी। ऐसा इंसान होगा जो जहन्नुम से बचाया जाएगा और जन्नत में दाखिल किया जाएगा। फराइज भी पूरे किए, सुन्नतों में यानी जो हदीस में बातें थी, जिन पे करने का हुक्म था, जिनसे रोका गया, उनको भी माना, फिर डरता भी रहा हर वक्त अपनी पिछली जिंदगी से, और आइंदा के लिए भी मोहतात रहा। ये इताअत करने के बावजूद मोहतात है, फिर गया वो फाइज। अल्लाहु अकबर। व अक्समु बिल्लाहि जहदा अईमानिहिम, वो उन्होंने कस्में खाई अल्लाह की, अपनी पक्की कस्में, ला इन अमरताहुम ला यखरुजुन्ना, कि अलबत्ता अगर तूने हुक्म दिया उनको तो वो यकीनन जरूर निकलेंगे। अब ये कहा है किस चीज के लिए, निकलने के लिए कहा जा रहा है, जब उनको कहा जाता जिहाद के लिए निकले तो पक्की कस्में खाते आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी आके, हम तो तैयार बैठे हैं, हम तो बेकरार हैं, कब आप हमें हुक्म दें, बस हम तो अपने घर बार बाल बच्चों को छोड़ के बस मैदान जंग निकले, शहादत के शौक ने हमें बेचैन किया हुआ, ये है वो है, बातें इतनी, यानी जुबान तो बंद होती ही नहीं, हर वक्त जुबानी दावे से हम अपनी, माफ करें कि हम अपनी नेकी के दावे करते रहे, हाँ बस हम तो ये करने के लिए बेचैन, बस मैं तो ये कहती हूं, बस मैं, बातें बातें बातें, हम तो हाजिर हैं अल्लाह के हुक्मों के लिए, हम तो बस ये अल्लाह हुक्म दे तो हम क्यों नहीं मानेंगे, हम तो ऐसे करेंगे। अस्तग़फ़िरुल्लाह, यानी वो तो निकलने के लिए कह रहे थे ना। और कितनी बातें हैं कि हम कहते हैं कि हम ऐसे भी करने को तैयार हैं, बस अल्लाह का हुक्म आ जाए फिर तो देखो मैं करके क्या दिखाती हूँ। और मैं तो अगर उस जमाने में होती, मैं तो कहती मैं पता नहीं उस जमाने में होती तो मैं तो क्या कर जाती, और करना कुछ भी नहीं होता। अल्लाह ताला ने फरमाया कुल, आप कह दें या नबी ला तो किसी को कसमें खाने की कोई जरूरत नहीं, ता तो मारूफा, तुम्हारी इताअत का सबको पता है। एक ये माना है। दूसरा माना ता तो मारूफा का मतलब क्या है कि तुमसे तो इताअत का मुतालबा है कि तुम इताअत करके दिखाओ, बस करो कसमें खाने को, इताअत करके दिखाओ, इताअत से पता चलेगा कि तुम्हारी बात कितनी सच्ची है। ये तो ऐसे है जैसे कि डांट पड़ रही है। और इताअत क्या होती है ये तुम देख लो कि जो मुसलमान है तुम्हारे सामने उनको देख लो, मारूफ है यानी जानी पहचानी है, उनको देख लो ना, तो वो तो बड़ बड़ के बातें भी नहीं करते, हाँ काम के वक्त में देखो सबसे आगे निकल जाते हैं। समझ आई बात? इताअत तो मारूफ है यानी सबको, मारूफ क्या चीज होती है, जानी पहचानी, सबको पता है, सबको पता है इताअत क्या चीज होती है। और तुमने इताअत देखनी है तो वो सच्चे मोमिनों की देख लो। ये क्या करते थे कि जब वो कहना कि हम तो बहुत करेंगे, बहुत हम तो बस तैयार बैठे हैं, और उसके बाद जब कॉल आती जिहाद की कि निकलो अल्लाह के रास्ते में, तो इनका कोई अता पता ही ना होता। वो हमारे तो घर पीछे के खाली हैं, अकेले हैं, हमारे तो बाल बच्चों के ये मसले हैं, हमारे तो ऐसे है वो है, आके फिर बहाने करना शुरू हो जाते, इनका कोई अता पता ही नहीं होता था। तो वही जो मैं आपको पहले मिसाल दे रही थी, अब उसी मिसाल से आप ये समझें कि आपके पास कोई आपकी दोस्त आती है और आपको इतनी बातें करती है, जी बस जब तुम्हें कोई जरूरत हो मैं जो हूं, बस मैं जो तुम्हारी बहन हूं यहाँ पे मौजूद, तुम्हें तो किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं, तुम तो ऐसे नहीं वैसे, इतनी बातें इतनी बातें, बस हम हैं ना। फिर इसके बाद क्या, उसके बाद एक दिन आपको जरूरत पड़ जाती है। अगर आपको कभी इसका तजर्बा हुआ ना तो आपको मेरी बात बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगी। जब आपको फिर एक दिन जरूरत पड़ती है तो आप उसको कॉल करती हैं, तो वहां आए बाएं शाएं, वहां ऐसे नहीं तो वैसे नहीं तो वो इधर उधर की बातें करती है, फिर आप सोचते हैं कि ये कैसी थी, इसने इतनी बातें करने की फिर जरूरत क्या थी, इससे तो अच्छे वो लोग हैं, चलो ज्यादा बातें नहीं की लेकिन चलो काम भी नहीं आए, आज तक मैंने इसको क्या समझा और ये क्या निकली। आपको उसका ज्यादा दुख होता है क्योंकि उसने अपनी बातें कर करके इतना इतनी बातें की होती हैं आपके सामने कि आपको लगता है कि बस इससे ज्यादा मेरा सिंसियर ही कोई नहीं। और एकदम आपके सामने जब हकीकत खुलती है कि नहीं ये तो फ्रॉड था, ये तो सामने कुछ और पीछे कुछ और, ये तो सारे दावे ऐसे ही थे, कोई इखलास नहीं था उनमें, फिर जो काम आपका नहीं होता या जो आपकी जरूरत है वो तो अलग बात है, लेकिन इस चीज का बताएं दुख कितना होता है, इसने मुझे धोखा दिया। बिल्कुल इसी तरह ये लोग कहते थे, बस हमसे ज्यादा तो कोई ईमान वाला नहीं, हम तो ईमान वाले, हम तो अल्लाह पे ईमान, हम तो उसके रसूल पे ईमान, हम तो इताअत के लिए बेचैन, आप तो बताएं सही, हमारा सर हाजिर है, हम हाजिर हैं, आप हुक्म तो करें। उसके बाद जब हुक्म होता है तो फिर पता ही नहीं चलता किधर है किधर ये। जुबानी बातें जितनी मर्जी करा लो अमल सिफर। अल्लाह माफ कर देना, अल्लाह ताला जो भी बोलते हैं हमारे खिलाफ हुज्जत ना बने, या अल्लाह हम तो खुद बहुत कमजोर हैं, बातें बातें ही ना रह जाए और हमारे खिलाफ ना उस दिन इस्तेमाल हो। तो यानी बातें बातें, पहले भी बात आई कि बातें इनसे जितनी मर्जी करा लो, यहां पे भी आया कसमें खा खा के कहेंगे कितनी अपनी इताअत के दावे और ये, लेकिन जब दीन को जरूरत पड़ती है कि निकलो इस दीन की खातिर, जब दीन पे कड़ा वक्त आता है तब कहां हो तुम, कहीं पे भी नहीं। तो ये इन्होंने सारा कुछ किया मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक को पकड़ पकड़ के कहीं उनको जो है ना वो नहीं किया कि उनको सजाएं दी हो या कुछ हो। कुरान में ये डांट ही उनके लिए काफी थी, इताअत करके दिखाओ, अल्लाह को तुमसे अमल चाहिए। अब हम क्या कहते हैं, तो हम ये पढ़ लेते हैं तो आगे से क्या कहते हैं, अमल करना बड़ा मुश्किल है, वो नहीं बस हमसे होता, तो फिर ये बातें फिर किस बात की, फिर दावे किस बात के अपने ईमान के, और हम कितने सच्चे हैं, और आपको क्या पता इंसान की नीयत क्या है, आप बस हम आपको क्या पता हमारे अंदर कितना अच्छा है, वो अंदर को क्या करना है जब अमल ही नहीं, दावे इतनी बड़ी बड़ी बातें, अंदर पता नहीं कितना सुनहरी है, अगर अंदर इतना ही अच्छा होता तो वो तो बाहर झलकता अमल के अंदर। मारूफा, और जब ये बात पता चलती है ना कि दूसरा जो इसका माना है कि यानी जो पहला माना है कि तुम्हारी इताअत का पता है सारा, ऐसा लगता है जैसे हम नंगे हो गए। अल्लाह को पता है कि हमारे अंदर कितनी इताअत है, बातें हमारी कितनी बड़ी बड़ी, बातें हम दूसरों पे भी कर देते हैं, फलाना देखो कैसे, फलाना देखो, जैसे कि हम बहुत बड़ी कोई चीज है, इतने नेक हैं कि हद से ज्यादा। हमारे अंदर अपने अंदर कितनी है, ऐसे लगता है जैसे अल्लाह ताला हमें बता रहा है ताह तुम मारूफ है, पता है तुम्हारी भी कितनी इताअत है, तुम क्या बातें करते हो। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तअमलून, अल्लाह ताला खबर रखने वाला है जो तुम अमल करते हो, सब कुछ पता है अल्लाह ताला को, हर एक के अमल की खबर है, दिखाते हम कितना है, अमल हमारा कितना होता, बातें हमारी कितनी है, पीछे हमारे एक्शन क्या होते, सब कुछ खबर है उस रब को। लोगों को हम धोखा दे सकते हैं बातें कर करके, अपनी नेकियां गिनवा गिनवा के, अपने आप को बता बता के कि हम क्या हैं, बस सिर्फ अपनी नेकियां ही बताते हैं, अपनी खामियों को तो वैसे छुपा लेते हैं, वो ना किसी को पता चले, नेकियां मेरी आगे आगे हाईलाइटेड रहे, लेकिन क्या तुम्हारी इताअत है वो अल्लाह जानता है, उसको पता है कितने पानी में हो तुम। अल्लाह तो मुझे माफ कर दे। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, कह दीजिए इताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की, ये है तुमसे रिक्वायर्ड, मान के दिखाओ, कहना मान के दिखाओ, जुबानी दावों को छोड़ दो। देखें जब इंसान ना अमल करके दिखाता है ना, तो फिर खुद ही पता चल जाता है कि किसका कौन कितने ईमान वाला है, कौन कितने इसके दिल के अंदर कितना। और अगर सिर्फ कहते ना दिल हमारा बहुत अच्छा है, दिल के अंदर आपको क्या पता हमारा, तो अगर अमल में नहीं आ रहा ना तो वो बता रहा है, बेअमली खुद बता रही है कि दिल में कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो दिल में होता है वो इंसान के अमल में खुद ब खुद ढल के आ जाता है। देखिए आपके दिल में अगर किसी के लिए मोहब्बत है, आती है कि नहीं आपके अमल में, आप उसे मिलते हैं, आप उसे बात करते हैं, आती है ना। किसी से नफरत होती है तब भी आ जाती है, चेहरे पे भी आ जाती है, जुबान में भी आ जाती है, जो कड़वाहट की सूरत में, और उसके साथ जो मामला है उसमें भी आ जाती है। कैसे हो सकता है अल्लाह से इतनी मोहब्बत है, हमें अल्लाह के ऊपर ईमान, और रसूल से तो इतनी मोहब्बत है कि आंसू निकलते रहते हैं जो ही उनकी बात आती, लेकिन जहां पे उनका हुक्म आता है वहां पे कोई परवाह ही नहीं। अल्लाह मैं आपको ये बातें अल्लाह गवाह इसलिए नहीं कह रही कि मैं कोई खुद परफेक्ट हूं, या मैं आपको बता रही हूं, मेरे तो अपने लिए है ये, सबसे पहले मेरे अपने लिए। जो मैं आपको बात कहती हूँ ये मतलब नहीं कि मैं कोई बहुत उसको अमल करने वाली हूं तो अब आपकी कोई खामियां नहीं। तो जब मैं पढ़ा रही हूं तो मैं अपने लिए भी पढ़ रही, हम सब पढ़ रहे हैं, हम सब इस चीज के स्टूडेंट हैं। तो अल्लाह ताला हमारे सब के अमल में ले आए, तो हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अल्लाह ताला ने ये फरमाया, कुल ए नबी आप कह दें इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो उसके रसूल की। तो इताअत रसूल की भी जरूरी है, किसने कहा है रसूल की इताअत की जरूरत नहीं है, बस कुरान सुन लो, कुरान पढ़ लो बस काफी है। और किसने कहा है कि ये कह देना हम सुन्नी है इससे आप सुन्नत वाले हो जाते हैं, जब तक सुन्नत पे अमल क्यों नहीं करके दिखाते। फिर फइन तवल्लौ फइन्नमा अलैहिमा हुम्मिला व अलैकुम मा हुम्मिलतुम, फिर अगर तुम मुंह मोड़ते हो ना, अगर दिल तुम्हारे फिरते हैं, तो ऐ नबी बेशक इस पर है जो वो उठवाया गया और तुम पर है जो तुम उठवाए गए। यानी जिनको आप कह रहे हैं ये बात कि इताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की, अगर ये लोग नहीं इस बात सुनते, नई बात मानते, मुंह मोड़ लेते हैं, तो ठीक है, फिर ये उसके जिम्मेदार हैं जो ये उठवाए गए। क्या उठवाए गए, हम पे है क्या जिम्मेदारी हमारी क्या है कि हम इताअत करें, ठीक है। तो हम उसके मुकल्लफ हैं, हमसे ये पूछ होगी, हमारी ये जिम्मेदारी है, फिर ठीक है। उनके ऊपर वो है जो वो उठवाएगा और आपके ऊपर वो है जो आप उठवाएगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर क्या था, ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात पहुंचा दी या नहीं पहुंचाई पूरी, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो फिर ठीक है, वो है ना वलस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, तेरा आप इनके ऊपर कोई दारोगा थोड़ी है कि आपने इनको डंडे मार मार के इनसे करवाना है, नहीं करते तो ना करें, आप आपका काम है बता देना। और ये और जगह पे भी आया कि हमारे नबी की जिम्मेदारी सिर्फ पहुंचा देना है, सिर्फ पहुंचा देना, आ गए तुमने करना है ठीक है, नहीं करना तो नहीं, ना सही, तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी। इसके बाद होता है हमारे हमारे ऊपर क्या रह जाता है, हम अगर नबी के ऊपर नहीं है तो हमारे ऊपर क्या ये जिम्मेदारी है कि अगर मैं आपको ये बता देती हूँ तो क्या इसके बाद मेरी ये जिम्मेदारी कि मैं डंडा पकड़ के चल पड़ूँ और उसको फोन कर रही हूँ, उसको बोल तुम क्या कर रही हो, तुमने शुरू किया अमल के नहीं किया, तुमने किया या नहीं किया, और तुम क्या इस तरह से क्यों कर रही हो, तुम उस तरह से क्यों, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी नहीं थी। उसके बाद किसी दाई की ये जिम्मेदारी नहीं रह जाती कि वो इस तरह लोगों को पूछता फिरे, तुमने क्यों नहीं किया, तुम क्यों नहीं कर रहे, फलां तुम ऐसे क्यों करते हो, फलां तुम ऐसे क्यों करते हो, क्यों। ये आपका काम सिर्फ बलाग है, पहुंचाना है, दैट्स इट, बाकी अल्लाह का और उसका मामला है, वो इताअत करता है कितनी करता है कितनी नहीं करता। ये पूछ गिछ करना, ये जजमेंटल होना, जज बन जाना हर एक के लिए, वो क्यों ऐसा कर रहा है, वो क्यों ऐसा पहन रहा है, वो क्यों उधर जा रहा है, वो क्यों उधर से आ रहा है, वो ऐसे मामलात क्यों कर रहा है, उसने ये क्यों किया, ये तो मेरी और आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अपनी अपनी फिक्र करनी है, हमारी जिम्मेदारी क्या, हमारा अमल क्या है, ये है हमारी जिम्मेदारी। तो यहां पे किसकी जिम्मेदारी की बात है, एक जिम्मेदारी जो तुम्हारी है, एक जिम्मेदारी जो रसूल की है, ठीक है। तुम्हारी जिम्मेदारी है अतीउल्लाह और अतीउर रसूल, उनकी जिम्मेदारी क्या है, वो पहुंचा दे, उन्होंने पहुंचा दिया, अब आप अपनी जिम्मेदारी को की फिक्र करो। वहीं तो तीहु, और दूसरा सिनेरियो भी दे दिया, पहली बात बता दी, अगर मुंह फेरते हैं तो ये बात है, और अगर तुम इताअत करोगे तो फिर क्या है, तहतदू, तुम हिदायत पा जाओगे। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अल्लाह की इताअत करोगे तभी तुम हिदायत याफ्ता हो, इसके बगैर कोई हिदायत नहीं है कि हम सोचेंगे हम सीधे रास्ते पर हैं, हमने हिदायत पा ली। हिदायत का क्राइटेरिया एक ही है और वो है इताअत, दैट्स इट। दर्स दे देने, कुरान के टीचर बन जाना या कुरान के स्टूडेंट बन जाना, ये हिफ्ज कर लेना या तर्जुमे याद कर लेना, फुल मार्क्स ले लेना, ये इसका मतलब ये नहीं कि हमने हिदायत पा ली है। हम ये सोचते हैं ना हमने हिदायत पा ली, यहाँ पे एडमिशन ले लिया, हिदायत मिल गई, अब मुझे राह दिखी है, अभी सिर्फ अभी इस पे चल के दिखाना है, हमने चल के दिखाएंगे नहीं तो हिदायत याफ्ता नहीं है। इताअत को हिदायत कहा गया, बातों को हिदायत नहीं कहा गया, हमने शुरू कर लिया, हमने ये कर लिया, इताअत 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 क्या है, अमल फॉलो करके दिखाओ, अमल करके दिखाओ, वही तुम्हारी जिंदगी से गायब है। और इस सारी रिक्वायरमेंट यहां पे क्या है, इन सारी आयात में इताअत इताअत इताअत, नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड फ्रॉम यू। अब मुझे अगर खूबसूरत बातें करनी आती हूँ, खूबसूरत दर्स देने आते हूँ, दर्स मेरे लोग सुन रहे हैं, वहां सुन रहे हैं, वहां सुन रहे हैं, ये बातें नहीं अल्लाह को चाहिए। काम कितना करके दिखाया तुमने, आप अगर नौकर रखे हैं अपने घर में, वो सारा दिन बातें कर करके सुनाता रहे आपको, वो काम एक भी ना करके दिखाए, और ये कहता रहे बर्तन मुझे बड़े अच्छे धोने आते हैं, सफाई तो मैं ऐसे करता हूँ, ये करता हूँ, उसके बाद आप कहेंगे कि मैंने क्या करना तुम्हारी बातों को, जो तुम काम तो करके नहीं दिखाते। तो अल्लाह की आयात को, कुरान को चूम चूम के रख रहे हैं, उसकी पढ़ाइयां बहुत हो रही हैं, घर में ला ला के लोगों से कुरान पढ़वा रहे हैं, मैं तो कुरान खानियां कराती हूँ, मैं तो ये करती हूँ वो करती हूँ, उसके बाद क्या, इताअत कितनी है, इसका जवाब अल्लाह ने लेना है, दूसरी चीजों का नहीं लेना, कि आपने कितनी तारीफें कुरान की थी, ये तो बेस्ट किताब है, ये तो ये है, जिससे भी पूछ लें वो यही कहता है ना। आज हम सब मुसलमानों के यही हालात है ना, इताअत में हम पीछे हैं, जिसको अल्लाह ताला ने कहा कि वही तो हिदायत पा जाना है। और देखना है कि कौन हिदायत पा गया है, तो वो है जो जो इताअत करके दिखाता है, इन बातों पे अमल करके दिखाता है। और जो अमल नहीं करके दिखाता वो कोई हिदायत याफ्ता नहीं है। वमा अला रसूली इल्ला बलागुल मुबीन, देखिए अब वाजे तौर पे आ गया, हमारे रसूल की जिम्मेदारी कुछ भी नहीं है सिवाय इसके तुम्हें बता देना। फदक्किर इन्नमा अंता मुदक्किर, है नबी आप नसीहत कर दें, आपका काम बस यही है। हाँ, उसकी पकड़ नहीं है रसूल की इस बात के ऊपर कि लोगों ने अमल क्यों नहीं किया था। किसी टीचर की, किसी दाई की, किसी रसूल की, किसी नबी की ये नहीं है कि आपके जो उम्मती हैं या आपके जो स्टूडेंट हैं वो ऐसे कर रहे हैं, या आपके जो वो फलाने हैं आपके सुनने वाले वो ये क्यों कर रहे हैं। उसकी जिम्मेदारी नहीं है, उसकी जिम्मेदारी पहुंचा देना, बस दैट्स इट। आगे उन लोगों की जिम्मेदारी वो क्या करते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला हमें बामल बना दे, अल्लाह हमें अपनी इताअत और अपने रसूल की इताअत नसीब फरमा, हमें समेना वाताना कहने वाला बना दे या अल्लाह ताला, हमें पीछे रहने वालों में से ना कर देना, और जो सिफात आयत 52 में अल्लाह ताला वो हमारे अंदर पैदा फरमा दे। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुने।
كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكموا يوم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين